दोस्तों SBS हिंदी पर आज हम बात करते हैं कल से शुरू होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण गुजरात की घटना वाइब्रेंट गुजरात समिट के बारे में। चार दिन तक चलने वाले इस समिट पर देश दुनिया की नज़र इसलिए है क्योंकि देश विदेश से बहुत सारे राजनीतिक नेता, बिजनेसमैन और बहुत सारे भारतीय उद्योगपति इसमें हिस्सा ले रहे हैं और गुजरात को तरक्की के तौर पर आगे ले जाने के लिए ये समिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वहाँ का माहौल, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर इस बार ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं पत्रकार संजय उपाध्याय। संजय जी, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है।
नमस्कार अविता जी।
तो संजय जी, कल से शुरू हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट, क्या माहौल है वहाँ का, क्या खास बात है इस वर्ष की समिट की?
इस वर्ष के समिट की बात करें तो यहाँ पर कुल ऑस्ट्रेलिया समेत 12 देश इसमें कंट्री पार्टनर बने हैं गुजरात में, जिसमें उन वहां से पार्टिसिपेंट्स भी आए हैं, वहां पे ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करने के लिए भी लोग आए हैं। खासकर इसका इस साल का जो वाइब्रेंट समिट है, इसमें जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है वो मीडियम स्केल इंडस्ट्री MSME यूनिट्स जो है, जो कि भारत की गुजरात की मेन थीम है, जो हड्डी है बोल सकते इंडस्ट्री में, कि अगर ये लोग डेवलप कर रहे हैं तो कंट्री डेवलप वाकई में हो रहा है। इन लोगों के साथ मैक्सिमम MOU गवर्नमेंट साइन कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी विश्व में से जो आ रहे हैं डेलीगेट्स उनके बारे में बात, तो करीब 21,000 प्लस डेलीगेट्स इस वाइब्रेंट समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं और करीबन 55,000 से ज्यादा लोग इस ग्लोबल कॉन्क्लेव है, ग्लोबल सेमिनार से उसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ विश्व में से और पूरे देश में से जो लोग पार्टिसिपेट ट्रेड शो में के लिए, एक बहुत बड़ा ट्रेड शो यहाँ पे शुरू किया जा रहा है कल से, उसमें भी उसके जो विजिटर्स की संख्या बताई जा रही है वो 15 से 20 लाख के करीब बताई जा रही है। और ये सारी तैयारियां गुजरात गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है और करीबन जब आज दोपहर के बाद से प्री इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, जिस तरह से का रिपोर्ट फिगर पेपर आउट हो रहा है, सब मिल रहा है, उसके हिसाब से करीबन 25,000 जितने MOU जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग MOU साइन करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 8 साल से लगातार ये जो वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, इससे लोगों को कुछ न कुछ नया सोचने के बारे में, खासकर जब इतने बड़े बड़े इस बार वाइब्रेंट में काफी बड़े बड़े फॉर्च्यून टॉप लिस्ट में वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं, तो उनके साथ बातचीत करके गुजरात में और भारत में किस तरह डेवलपमेंट किया जा सकता है, किस तरह के उद्योगों के लिए किस तरह की पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, इन सारे सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है।
तो इस सारे सेक्टर्स पर फोकस किया जा सकता है, तो अगर खास करके सेक्टर्स की बात करें या कौन से सेक्टर्स पर इस बार खास ध्यान केंद्रित किया जा रहा है?
गुजरात गवर्नमेंट ने इस बार जो दो सेक्शन किए हैं जिसपे जो सबसे ज्यादा फोकस किए जा रहे हैं, उसमें डेफिनेटली ग्रीन एनर्जी, पिछले 2 साल से थोड़ा उसमें ध्यान कम था, पॉलिसीज वायबल नहीं थी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि जो भी ग्रीन एनर्जी में जाता था उसको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट की ओर से, और उसका सिंगल विंडो सिस्टम भी नहीं था, मगर इस बार से फिर से ग्रीन एनर्जी सिस्टम को गवर्नमेंट प्रोत्साहित कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो लीडिंग ग्रुप है अदानी ग्रुप, वो 35,000 CR का MOU गुजरात गवर्नमेंट के साथ इस बारे में कर रहा है, जिसमें गुजरात में, नॉर्थ गुजरात में पाटन और कच्छ में ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट करने का उनका प्लानिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है वो ग्रीन एनर्जी में कुछ न कुछ गुजरात में करना चाहती है। दूसरा जो सेक्टर, जो हमारे CM है रूपानी जी, उन्होंने जो फोकस किया है, एक विजन दिया है, वो है गुजरात का कोस्टल एरिया। आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया गुजरात में है, जो करीबन 1600 किलोमीटर का है। इस 1600 किलोमीटर में बहुत सारे पोर्ट्स भी है, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि अगर यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमी जोन अगर बनाया जाए तो वो पूरे देश का सबसे बड़ा हब बन सकता है, क्योंकि अगर इतना बड़ा इकोनॉमी जोन आता है तो स्वाभाविक रूप से कि पूरे देश के लोग बिजनेस करना, जैसे अभी इसका हब है बॉम्बे, हम बोल सकते हैं कि मुंबई में सारे देश के लोग मुंबई जाते हैं क्योंकि वहां से पोर्ट फैसिलिटी है, एक खास ट्रीटमेंट मिलता है, तो वही उसी तरह का एक माहौल गुजरात के किसी कोस्टल एरिया में डेवलपमेंट करने के लिए उधर गवर्नमेंट सोच रही है। और मैं आपको बता दूं कि इस बारे में पूरा प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया गया है और कुछ ही दिनों में इसके बारे में भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है। इसके अलावा जो मेन सेक्टर इन दोनों के अलावा जो प्राइमरी अभी दिख रहे हैं उसमें एक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और बायोटेक, इन दोनों क्षेत्र में भी गवर्नमेंट काफी कुछ करने की इच्छा रखती है।
संजय जी, जैसे बहुत टीकाकारों के द्वारा टिप्पणियां होती रहती है कि ये सब तमाशा जैसा हो रहा है, कुछ फलश्रुति नहीं निकलती, तो क्या वाइब्रेंट की फलश्रुति के बारे में जानकारी देंगे?
डेफिनेटली, जिस तरह से खर्च हो रहा है, वाइब्रेंट की बात करें तो जिस तरह से पूरा माहौल खड़ा किया जा रहा है, महात्मा मंदिर में डेलीगेट्स आते हैं, उनकी सरबरा की जा रही है, और मेन जो टीका होती है वो इस बारे में होती है कि जितना आप दिखाते हो उतना काम होता नहीं है। गुजरात में पिछले 8 साल की अगर बात करें तो जब से ये वाइब्रेंट शुरू किया गया है तब से करीबन 51,000 से ज्यादा MOU साइन किए गए हैं और करीबन 84 लाख CR के करीब इन्वेस्टमेंट करने की प्रपोजल अलग अलग ग्रुप ने दिखाई है। मगर जब आप इस पूरी प्रोसीजर के इंप्लीमेंट की बात करें कि भाई ये हुआ है क्या इतना बड़ा काम, तो वो आपको मिलेगा 60-40 के रेशियो में कि 60% इंडस्ट्री ही इसमें आई है। मगर मैं एक बार जरूर बताना चाहूंगा कि इस बार का जो वाइब्रेंट है ये किसी तरह के इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं है। इस बार के वाइब्रेंट में इन्होंने प्योर नॉलेज शेयरिंग के ऊपर फोकस किया है।
वाकई ये बहुत अच्छी खबर है। और संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया SBS हिंदी के साथ बात करने के लिए और ये जानकारी शेयर करने के लिए।